SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया में इंटरजेनरेशनल रिपोर्ट सामने आई और इस रिपोर्ट को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अंकिता मिश्रा के साथ, जो कि RMIT यूनिवर्सिटी मेलबर्न में सीनियर लेक्चरर हैं स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंस एंड मार्केटिंग में। साथ ही साथ वो सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट RMIT की कोर मेंबर भी हैं। तो अंकिता जी से बात करते हैं, वो अर्थशास्त्री हैं, उनसे समझते हैं कि इंटरजेनरेशनल रिपोर्ट क्या है और इसके भारतीय परिप्रेक्ष्य में क्या मायने हैं। अंकिता जी, आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्ते विकास जी, एंड बहुत बहुत आपका शुक्रिया मुझे अपने फोरम पे इनवाइट करने के लिए, और मैं आपके व्यूवर से बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ, एंड ऐसी
जी
आशा करती हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ यहाँ पर।
जी अंकिता, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि इंटरजेनरेशनल रिपोर्ट आखिर क्या है?
अच्छा, तो सबसे पहले इंटरजेनरेशनल रिपोर्ट, एक अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो ये आपको फ्यूचर का और भविष्य का आईना दिखाती है, और ये बताती है कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, अगर करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज कंटिन्यू करें तो ऑस्ट्रेलिया का फ्यूचर आज से 40 साल बाद क्या होगा। तो ये रिपोर्ट सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई थी सन 2002 में, जब जॉन हॉवर्ड प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय के ट्रेजरर मिस्टर पीटर कॉस्टेलो ने इसको 2002 में इंट्रोड्यूस किया था, और तब से फिर इसको रेगुलर फीचर बना दिया गया। ये हर 5 साल पे इंट्रोड्यूस होती है, जिसमें 40 साल आगे की ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी का प्रिडिक्शन बताया जाता है। तो पहले मैं आपको इस रिपोर्ट का जो मेन फाइंडिंग बोल सकते हैं, इस रिपोर्ट की जो मेन फाइंडिंग सामने आई है वो ये आई है कि आज से 40 साल बाद जो ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी होगी उसमें सबसे बड़ा प्रेशर होगा एजिंग पॉपुलेशन का, और उसका रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत ही लो प्रोजेक्ट की गई है। सो आप सोचिए कि आप ज्यादा लोग ऐड नहीं कर रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे एज होगी, तो समय के साथ एजिंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और उसके अलावा एक जो चीज हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि आप कितनी उम्र तक जिंदा रहेंगे, तो आप देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज इंप्रूव हो रही हैं समय के साथ, मेडिकल एडवांसेस हो रहे हैं, तो लोग ज्यादा समय तक जी रहे हैं। तो ये एजिंग एजिंग की पॉपुलेशन की जो एक प्रॉब्लम बोल सकते हैं उसको और बढ़ा देता है। और अगर आप करंट ऑस्ट्रेलिया का बर्थ रेट देखें कि तो वो 1.8 है, इसका मतलब ये है कि जो भी ऑस्ट्रेलियन वुमेन है या ऑस्ट्रेलियन महिला है उसके 2 से कम बच्चे होते हैं। और सिंपल लॉजिक ये कहता है कि अगर हमें जस्ट रिप्लेस करना है करंट पॉपुलेशन को न्यू पॉपुलेशन से, सो हमें दो से थोड़े से ज्यादा बच्चे चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आप देखिए, तो अगर आपकी पॉपुलेशन, मतलब अगर आपका फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं वो 2 से कम है, तो आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को नई पॉपुलेशन से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे।
जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो कि हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो जनसंख्या है जो कि अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रही है, ऐसे में इमिग्रेंट जो भारत से आएंगे वो ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में किस तरह से सहयोग कर सकते हैं?
ओके, सो सबसे पहले उसके लिए हमें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के डेमोग्राफिक्स को देखना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ डेटा बोलते हूँ, उससे आपको इंडिया की इम्पोर्टेंस ऑस्ट्रेलिया के इस डेमोग्राफिक चेंज में नजर आएगी। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, जिसको हम लोग ABS बोलते हैं, वो सारा डेटा, जितना भी ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड, इकोनॉमी रिलेटेड, ट्रेड रिलेटेड, डेमोग्राफिक्स रिलेटेड होता है, वो सब वही एजेंसी के द्वारा आता है। तो ये जो एजेंसी है ये हर साल ऑस्ट्रेलिया की रेसिडेंट पॉपुलेशन, जो भी पॉपुलेशन उस समय ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड कर रही है, कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉपुलेशन वहां की सिटीजन हो, बस वो रिसाइड कर रही है, मतलब वो वहां पे उस समय रह रही है, वो डेटा रिलीज करती है और उसका कंट्री ऑफ बर्थ भी बताती है। तो अगर आप लास्ट, मतलब जो लेटेस्ट डेटा है हमारे पास, अगर आप उसे देखिए, तो 30% जो ऑस्ट्रेलिया की रिसाइडिंग पॉपुलेशन है वो दूसरे कंट्रीज में बॉर्न हुई है, जिसको हम लोग ओवरसीज बॉर्न कहते हैं। और अगर उसमें आप इंडियन ग्रुप का शेयर देखिए, तो वो सेकंड नंबर पर है अभी, और वो अराउंड 3% है। तो आउट ऑफ दैट 30%, 3% आर इंडियन।
तो अंकिता, जब जब इतने भारतीय यहाँ पर आएंगे, इमिग्रेंट्स आएंगे, तो उनका कितना बड़ा रोल रहेगा ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था में?
तो जैसे जब हमने आपसे कहा कि इंटरजेनरेशनल रिपोर्ट में हमने दो बातें सामने लाई कि भाई, एक तो एजिंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन एज कर रही है और नई पॉपुलेशन ज्यादा ऐड नहीं हो रही है। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहला कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि अगर आपकी एजिंग पॉपुलेशन है, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस हेल्थ केयर, एज केयर रिलेटेड सर्विसेज में बढ़ जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि अगर हमें, मतलब, कंट्री को ग्रो करना है, कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, तो हमें रिसोर्सेज की जरूरत होती है, कि एक बहुत जरूरी और आवश्यक रिसोर्स होता है लेबर रिसोर्स। तो जब हम लेबर रिसोर्स की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि वर्किंग एज ग्रुप में है, और उसमें भी हम उन लोगों की बात करते हैं जो कि लेबर फोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जो कि काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं। अब अगर आप इंडियन लोगों का रोल देखिए, तो अगर आप जो इंडिया से जो माइग्रेंट यहाँ पर आते हैं, नॉर्मली वो वर्किंग एज ग्रुप के होते हैं। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है, कुछ डेटा मैंने देखा था, जिसके हिसाब से मीडियन एज जो इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन की है ऑस्ट्रेलिया में, वो अराउंड 35 ईयर्स है। सो वो काफी, मतलब, प्रोडक्टिव और काफी मदद करेगा, उनका उनका हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स कम होगा, बट वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, सरकार को टैक्स देंगे। इनफैक्ट मेरे पास जो डेटा है वो सजेस्ट करता है, इंडियन बॉर्न माइग्रेंट का ग्रुप है यहाँ पर, वो सेकंड नंबर पर है टैक्स पे करने में।
तो वो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं अंकिता, जिसमें भारतीय भागीदारी बढ़ेगी, अगर हम अर्थव्यवस्था को समझें ऑस्ट्रेलिया की?
इंडियन ग्रुप देखें, इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन ग्रुप देखें ऑस्ट्रेलिया में, तो कुछ फीचर्स मैं आपको बताना चाहते हूँ इस पर्टिकुलर ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहली बात तो ये है कि जो इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही है, वो हाइली एजुकेटेड है। यूनिवर्सिटी एंड उससे अबव डिग्री होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो करीब 3 टाइम्स ज्यादा है कंपेयर टू जो नेटिव
दूसरे नंबर्स।
पॉपुलेशन है और या जो दूसरे कंट्रीज से आई है। ज्यादातर पॉपुलेशन, करीब 88% ऑफ इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन एम्प्लॉयड है, और उसकी फैमिली और हाउस होल्ड इनकम, मीडियन इनकम भी बाकी दूसरी बॉर्न पॉपुलेशन से या नेटिव पॉपुलेशन से ज्यादा है। और अगर आप ये देखें कि किन किन क्षेत्रों में ये पॉपुलेशन काम कर रही है, तो आप ये पाएंगे कि करीब 50% से ज्यादा इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन जो है वो टेक्निकल, प्रोफेशनल, आईटी रिलेटेड सर्विसेज में काम कर रही है। लेकिन अगर आप जस्ट ये पीरियड देखें 2006 से 2016 तक का, तो आप ये पाएंगे कि धीमे धीमे ये प्रोपोर्शन जो है वो मूव कर रहा है हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस की तरफ। सो ये इंडियन ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस में बढ़ रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे जैसे हमने कहा कि एजिंग पॉपुलेशन होगी, इन सब सर्विसेज की डिमांड
इनकी जरूरत
बढ़ेगी
ज्यादा बढ़ेगी, बिल्कुल।
पड़ेगी, तो हमें चाहिए कि उसमें ज्यादा काम करने वाले लोग हमें मिलें, और ऐसे लोग मिलें जो उन सब एरियाज में, मतलब उनके पास स्किल है उन सब एरियाज में काम करने के लिए, और वो चेंज ऑलरेडी दिखाई पड़ रहा है।
अंकिता, जब भारतीय समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी ऑस्ट्रेलिया में, उसकी अर्थव्यवस्था में, तो क्या नीतियों पे भी फर्क पड़ेगा, सरकार की तरफ से जो नीतियां हैं भारत को लेकर?
फर्क पड़ना चाहिए, और ये फर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो फर्क जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसका एक फीडबैक मैकेनिज्म है। जब इंडियन समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी तो ये समुदाय ऑस्ट्रेलियन नीतियों को और पॉलिसीज को प्रभावित कर सकता है और ऑस्ट्रेलियन नीतियां और पॉलिसीज इस समुदाय की भागीदारी ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाने में भी मदद कर सकती है। और हमारे पास कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं, तो अगर आप देखिए, अगर आप ग्लोबली देखिए, जैसे यूके, यूएस, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज जब धीरे धीरे डेवलप हुई और जब इसमें इंडियन माइग्रेशन बढ़ा, तो इंडियन माइग्रेशन ने इन इकोनॉमीज की ग्रोथ में काफी कंट्रीब्यूट किया। सिलिकॉन वैली के बारे में आप हम सब ने सुना है, यूएस की
जी
सिलिकॉन वैली में, जिसको डेवलप करने में इंडियंस का काफी योगदान रहा है। तो उसी तरह की टाइज ऑस्ट्रेलिया से बढ़ाने से और स्किल्ड माइग्रेशन होने से ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी ऑफ कोर्स बेनिफिट करेगी एंड इससे ऑस्ट्रेलियन इंडिया के टाइज में भी काफी सुधार
सुधार।
आएगा।
अंकिता, काफ़ी आपने जानकारी दी और ये रिपोर्ट के कई मायने हैं, न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन को लेकर बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते ताल्लुकात को लेकर भी। आपने काफ़ी चीज़ें हमें समझाई, उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को इसके बाद काफ़ी जानकारी मिली होगी। आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि भारत की भागीदारी भी ऑस्ट्रेलिया में बढ़े। आपने समय निकाला SBS हिंदी में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद विकास, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर।